الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين صدق الله العظيم. جب سردی کا زمانہ آتا ہے تو
ارے میاں تم اس کو قریب کرو گے تو ہوش میں رہا کرو, ذرا بے ہوش کی طرح کام کرو گے تو کوئی کام چلے گا کیا؟
جب سردی کا زمانہ آتا ہے تو سردی کے زمانے میں دھند چھائی رہتی ہے, اور یہ جو دھند ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو آبس اور بیکار نہیں فرمایا. اسی زمانے میں گندم کی فصل بھی لگائی جاتی ہے, اور اس گندم کی فصل کے لیے پانی کی ضرورت ہے. اگر پانی زیادہ دیا جائے اور کھڑا رہے تو وہ گندم کی فصل کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے انتظام فرمایا کہ اس زمانے میں دھند ہو جاتی ہے, اور وہ جو گندم ہے اس کی فصل وہ اس دھند میں سے پانی چوستی رہتی ہے. جس سے اس گندم کی فصل میں جان پڑتی رہتی ہے, اور اس کی جو ضرورت ہے وہ ضرورت پوری ہوتی رہتی ہے. ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ صاف دھند ہو گئی اور کچھ نظر نہیں آ رہا, اور ظاہری طور پہ تکلیف بھی معلوم ہوتی ہے, لیکن یہ تکلیف بھی ہماری ہی راحت کے لیے ہے. یہ تکلیف بھی ہماری راحت کے لیے, لہذا وہ جو دھند ہے سورج کی روشنی کو زمین پر نہیں پڑنے دیتا. حالانکہ سورج نکلا ہوتا ہے لیکن وہ جو دھند ہے وہ سورج کی روشنی کو زمین پر نہیں پڑنے دیتی. کئی کئی روز تک ایسا ہوتا ہے کہ سورج دکھائی نہیں دیتا, اور اس زمانے میں انسانوں کی کیفیت یہ ہوتی کہ سورج کو نہ دیکھنے کی وجہ سے مایوسیاں بھی طاری ہوتی ہیں, اور انسان کی طبیعت میں ایک چڑچڑاپن شروع ہو جاتا ہے. طبیعت میں کھچاؤ, تناوٹ اور چڑچڑاپن آ جاتا ہے. یہ اس موسم کا بھی کچھ اثر ہوتا ہے. اور وہ دھند کسی چیز سے بھی نہیں ہٹتی سوائے بارش کے. جب بارش ہوتی ہے تب وہ دھند ہٹ جاتی ہے. اسی طریقے سے انسان کے قلب پر کبھی دھند طاری ہو جاتی ہے, اور وہ دھند طاری ہونا اس طرح سے ہوتا ہے کہ اس کی کیفیت میں مایوسیاں پیدا ہو جاتی ہیں. جیسے دھند میں انسان اگر چلے تو گاڑی چلاتا ہے, لیکن سفر تو طے کر رہا ہوتا ہے لیکن دکھائی کچھ نہیں دیتا. और सफर तय हो रहा होता है, लेकिन दिखाई कुछ भी नहीं देता। इसी तरीके से इंसान कभी इबादत करता है, नमाजें पढ़ता है, रोजे रखता है, नेक अमाल करता है, यहां तक के अहलुल्लाह के सोहबत में भी जाता है, लेकिन फिर भी उसकी तबीयत में एक मायूसी की कैफियत होती है और उसकी तबीयत में एक तनाव पैदा होता है और वो सोचता है कि यार मैं नमाज रोजा तो कर रहा हूं लेकिन इसका कुछ फायदा ही नजर नहीं आ रहा। और उसकी एक वजह मुसलमानों ने अपने जहन में ये बना लिया है कि इधर हम दो रकात पढ़ेंगे, इधर से जो है वो जिब्रील अलैहिस्सलाम हमें सोने की अशरफियत दिखाना शुरू करेंगे, चार रकात पढ़ेंगे तो छठे आसमान पे आ जाएंगे, यानी हम दो दो करके रकाते नमाजें पढ़ते जाएंगे, उधर से हम पर नोट बरसना शुरू हो जाएंगे। और जिस दिन हमने तहज्जुद शुरू कर दी तो मैं पिलर को देखूंगा ऐसे गौर से और ये सोने का बन जाएगा। कोया के हर तरफ से फिर हटो बचो और वाह वाह ये सब शुरू हो जाएगा। आप देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजह तखलीके कायनात है, सैयदुल अंबिया है, सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। लेकिन आलम क्या है कि मुशरीन और मुशरिकीन और कुफार कैसे कैसे एतराजात कर रहे हैं, कितनी मुबारक कोहे सफा पर आप तशरीफ फरमा होकर कितनी मुबारक तालीम दे रहे हैं कि या यूहन्नास कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, कह लोगो कहो ला इलाहा इल्लल्लाह ईमान ले आओ तो तुम फलाह पा जाओगे। कितनी मुबारक तालीम है। अब आप बताइए एक अल्लाह ताला की वाहदानियत को मानने में तो दुनिया का सुकून भी है, एक अल्लाह को मानने में तो दुनिया का सुकून भी है, भाई खुदा एक हो तो आसान है ना। खुदा एक हो आसान है, और अगर दो खुदा हो जाए तो कितने मुश्किल हो जाए। दो शादी करने में बजाहिर तो बड़ा अच्छा लगता है लेकिन दो बीवियां निभाना कोई आसान है। दो सिमें ले लो तो मुश्किल पैदा हो जाती है। ये पार्लियामेंट में खुशी का घंटा भी बजा दिया ना। दो सिमें ले लो तो मुसीबत है, सही है कि नहीं। ये अल्लाह ताला के कितना करम के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 360 बुतों से बचा रहे, और वो बुत भी ऐसे कि अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं वही यसलुबहुमु ज़ुबाबु शैअन ला यस्तनक़िज़ुहु मिन। किस्सा यह है कि ये जो मुशरिकीन और कुफार मक्का ये क्या करते थे कि इनके जो बुत खाने खुदा में रखे हुए थे, क़ाबतुल्लाह में रखे हुए थे, ये उनकी खोपड़ी पर शहद लगाते थे ये खुदा का इकराम हो रहा है कि उसकी खोपड़ी पर शहद लगाया जा रहा है। तो ये रात को शहद लगाकर जाते और रात में खुदा की एक मखलूक मक्खी भी है, वो मक्खी मुख्तलिफ हिस्सों से दाखिल होती, सब शहद चाट के चली जाती। आखिर खुदा ने अपनी मक्खी मखलूक को भी तो गिजा देनी है ना। सुबह आते तो फिर वही, इनकी खोपड़ी शहद से खाली होती। अल्लाह ताला ने अजीब बात फरमाई, वहीं यसलुबहुम ज़ुबाबु शैअन ला यस्तनक़िदूहु मिन, कि अगर ये मक्खियां जो इनके खुदा की खोपड़ी से जो शहद लेकर जाती हैं, ये उसको वापस तो लेके आए उन मक्खियों से। आगे अल्लाह ताला ने क्या, सुभान अल्लाह, क्योंकि अल्लाह ताला ये हकीकी मालिक और पालने वाले ना, इसलिए फरमा दिया ज़ाइफ़ तालिबु अल मतलूब। कोई खुदा दूसरे को नहीं बोल सकता, लेकिन अल्लाह ताला चूंकि हकीकी मालिक वही है, पूरी कायनात के पैदा फरमाने वाले वही हैं, इसलिए फरमाया कि ये जो तालिब है ना, जिस खुदा की तलब में लगे हुए ये जो तालिब हैं, ये भी लुचर और इनका खुदा भी लुचर, कैसे बेबस है, ज़ईफ है। तो कितनी प्यारी तालीम ईमान की, इस्लाम की, एक खुदा को मानो। देखिए अगर किसी कोई आदमी कहीं मुलाजमत करता हो, वहां पर उसके दो बॉस हो जाए, दो मालिक हो, दो भाई मालिक है, मान लो मिलकर काम है, कितनी मुसीबत होगी। कमेटी, इमाम मस्जिद के सर पर कमेटी सवार हो जाए, कितनी मुश्किल होगी। दो की बात मानना कितना मुश्किल काम है, एक अल्लाह की मानना कितना आसान काम। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। तो कितनी प्यारी तालीम है कि एक अल्लाह की मानो, और वो भी मालिक, वो जो हमारे पैदा फरमाने वाले, किसी गैर की नहीं। लेकिन कुफार और मुशरिकीन मुखालिफ हो गए। तो इंसान पर कैफियत तारी होती रहती है, मायूसियां आती हैं, इबादत करके भी मायूस होता है, कभी ऐसा भी होता है। इसलिए तो कहा गया कि अपने सर पर किसी को बड़ा रखे। हकीमुल उम्मत मुजद्दिदुल मिल्लत हजरत मौलाना शाह अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह की बात मेरे मुर्शिद और मेरे शेख हजरत मौलाना शाह हकीम मोहम्मद अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे। एक साहब ने हकीमुल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह को लिखा, हाँ उनका नाम है हाफिज अब्दुल वली साहब बहराइची रहमतुल्लाह अलैह, कराची में आ गए थे। फिर ये हकीमुल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के मुजाज़े सोहबत थे। उन्होंने लिखा कि हजरत मैं तौबा करता हूं गुनाहों से, फिर तो गुनाह हो जाता है, फिर तौबा करता हूं फिर गुनाह हो जाता है, फिर तौबा करता हूं, कल न जाने मेरा क्या हाल होगा। हकीमुल उम्मत, अब देखो शेख मौजूद ना, फरमाया कि अगर आप कामिलीन में से न सही तो ताइबीन में से उठाए जाएंगे। कि तौबा करना ये खुद कितनी बड़ी नियामत, कि अल्लाह ताला फरमा रहे इन्नल्लाह युहिब्बुत तवाबीन, कि अल्लाह ताला बहुत तौबा करने वालों को, कसीरु तौबा लोगों को अपना प्यारा और अपना महबूब रखते हैं। और जब तक वो तौबा करते रहेंगे अपना महबूब रखेंगे, महबूब रखते हैं और महबूब रखेंगे, किनको, तौबा करने वालों को, और कसीरु तौबा फरमाया बहुत तौबा करने वालों को। तवाब फाल के वजन पर है ना, यानी कसीरु तौबा हो। सुभान अल्लाह। अब देखिए शेख था तो कैसी रहनुमाई फरमाई, लेकिन इंसान के कल पर मायूसी तारी होती है। इसे मारूमी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि कुए ना उम्मीदी मरो उम्मीद हास्त, नाउम्मीदी के रास्ते पर मत जाओ, अल्लाह ताला की उम्मीद के बेशुमार रास्ते हैं। और सुए तारीकी मरो खुर्शीद हास, अंधेरों में मत जाओ, अल्लाह ताला के कुर्ब के बेशुमार आफ्ताब रोशन है। अगर इंसान पर मायूसी तारी होती है, धुंध छा जाती, कुछ सुझाई नहीं देता, समझ में नहीं आता कि हम कहां जा रहे हैं, धुंध आ जाती है। नेक लोगों पर भी ऐसा होता है, आलिम पर भी ऐसा होता है, याद रखिएगा। इल्म जाहिरी हासिल करने वाले पर ऐसा होता है। तो उस वक्त के लिए अब वो धुंध आ गई, अब क्या करें, अब बारिश की जरूरत है। और वो बारिश कैसे होती है, उस बारिश की कहां जरूरत है, दिल पर जरूरत है। क्या बारिश है वो, देख कर मेरे अश्के नदामत, ये शेर मेरे प्यारे मुर्शिद और मेरे शेख रहमतुल्लाह अलैह का है कि देख कर मेरे अश्के नदामत, देख कर मेरे अश्के नदामत, अब्रे रहमत की बारिश है जामे। यानी मैंने जो नदामत के आंसू अल्लाह ताला के हुजूर में बहाए, उन नदामत के आंसू पर अल्लाह ताला का फजल और मेहरबानी हुई कि अल्लाह ताला ने अपनी रहमत के बादल भेज दिए। देख कर मेरे अश्के नदामत, अबरे रहमत की बारिश है जामे। यदि इंसान, ये रोना इतनी प्यारी चीज है कि जब इंसान अपने गुनाहों पर रोता है और नदामत के आंसू बहाता है तो उसके ऐसा लगता है कि जैसे फिजा बिल्कुल साफ हो गई। ये रोने की बरकत है, क्यों, धुंध हट गई ना, बारिश हो गई। और ये बारिश रहमत की बारिश, ये अल्लाह ताला उसके कल्ब और जान पर, उसके बातिन पर बरसाते हैं उसके आंसुओं की बरकत से। तो फिर नतीजा क्या होता है, अब सूरज की शुआएं फिर वो जमीन पर पहुंचना शुरू होती है। और मेरे मुर्शिद और शेख रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, फिर होता यह कि जब गंदम, धुंध का जमाना, जब धुंध हटती है ना, फिर सूरज निकलता है। और सूरज निकलता है, फिर सूरज की गर्मी से गंदम तैयार होती है। और जितनी जल्दी सूरज की गर्मी जिस पहुंचती है, उतनी जल्दी गंदम तैयार होती है। लिहाजा तजर्बा आप देख लीजिएगा हर साल का, कायदा यह है कि सिंध में गर्मी पहले आती है और जैसे जैसे ऊपर मुल्क की तरफ बढ़ते चले जाए, शुमाल की तरफ, वैसे वैसे गर्मी जरा देर से आती है। सही है ना जी। तो जैसे जैसे, इसलिए सिंध में गंदम की फसल पहले आती है, फिर पंजाब में, यहां तक कि मैं जून के महीने में, या गालबन जुलाई का महीना था, मैं चित्राल गया तो वहां देखा कि फसल कट रही है गंदम की, जबकि पूरा मुल्क, सिंध क्या पंजाब क्या, सब फारिग हो गए, मई तक वो भी फारिग हो जाते हैं, लेकिन वहां जून या गालबन जुलाई का महीना था और वहां गंदम की फसल अभी कट रही थी। क्यों, सूरज की गर्मी देर से मिलती है तो उनकी फसल भी देर से तैयार होती है। तो इंसान इसी तरह से जब इंसान अपने गुनाहों पर रोता है और अल्लाह वालों के सोबत, ये अल्लाह वाले ये आफताबे मानवी हैं, मेरे शेख फरमाते थे, इनकी निगाहों की गर्मी से हमारे अल्लाह ताला के कुर्ब और मोहब्बत की फसल तैयार होती है। वो जो हम मेहनत करते हैं, दीन के अहकाम को मेहनत करके करते हैं, वो जो बीज डालते हैं मेरे दोस्तों, फिर उस बीज से नतीजा ये निकलता है कि उन अल्लाह वालों की सोहबत से वो इल्म की फसल तैयार होती है, अल्लाह ताला की बंदगी की फसल तैयार होती है। कब, जब बंदा किसी अल्लाह वाले की सोहबत उठाता है, सूरज की गर्मी पाता है, इन अल्लाह वालों की सोहबत की गर्मी से अल्लाह ताला की मोहब्बत और ईमान की फसल तैयार होती है। जैसे हमें लगता है ना, हम मुसलमान तो है लेकिन हमारे फसल ईमान की फसल बंजर है बिल्कुल, हमारी जमीन दिल की बिल्कुल बंजर है, इसमें कोई खेती नहीं, ना हमें कोई फायदा ना किसी को कोई फायदा। हमें तो ऐसे लगता ना इस ईमान का तो हमें भी कोई फायदा नहीं है, किसी को क्या फायदा होगा। वजह क्या है? वजह यही है कि उस दिल की बंजर जमीन पर, इस दिल की बंजर जमीन पर जरूरत है कि इस जमीन को हम किसी अल्लाह वाले के हवाले करें। देखिए जब इंसान खुद जमीन पर मेहनत नहीं करता तो क्या करता है? ठेके पे दे देता है। तो ये जमीन दिल की अल्लाह वाले को दे दे कि इसमें अल्लाह ताला की मोहब्बत के बाग लगा दीजिए। या उनकी रहनुमाई लेता है कि मेहनत तो हम ही करेंगे, उनसे रहनुमाई लेता है कि क्या करूं कि हमारे दिल में भी वो जो सहाबा का रोना, सहाबा की मोहब्बत, सहाबा के अखलाक, वो अहलुल्ला के अखलाक हमारे दिल में क्यों नहीं है, हमारे पास क्यों नहीं है। आखिर हम भी वही इंसान, वो भी वही इंसान, हमारी इबादत का अजर कुछ, उनकी इबादत का अजर कुछ। आखिर जो नमाज हम पढ़ते हैं वही नमाज वही पढ़ते थे, कोई फर्क नहीं। अभी असर की 4 रकात पढ़ी तो ऐसा नहीं है कि वो असर की 6 रकात 8 रकात पढ़ते थे, ये 16 रकात पढ़ते थे क्योंकि साहबी थे। ये अल्लाह वाले जो है वो 20 रकात पढ़ते हैं क्योंकि भाई वो तो बड़े लोग हैं, नहीं वही 4 रकात पढ़ते हैं जो हमने पढ़ी। तरीकाकार भी यही है, इसी तरह 2 रकात के बाद बैठना और फिर खड़े हो जाना, यही तरीकाकार है। वही सना, वही सूरह फातिहा, वही कुरान करीम, वही रुकू, वही सजदा, वही सुभान रब्बिल अजीम, वही सुभान रब्बिल आला, कोई फर्क है? लेकिन नतीजे में फर्क है, आमाल की जान में फर्क है। वो जान क्या थी? सहाबा ने वो गर्मी और वो खेती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत से हासिल की। इसी सोहबत की जरूरत है कि उनकी निगरानी में हम अल्लाह ताला की मोहब्बत और कुर्ब और ताल्लुक की अगर इस दिल पर अगर मेहनत करें। इस दिल को अल्लाह ताला ने बनाया ही अलग है, इसकी जमीन अल्लाह ताला ने अजीब बनाई है क्योंकि दिल अपने रहने के लिए बनाया था ना, इसलिए ऐसी साख्त। देखिए कि आप मेरे शेख रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तसव्वुर करें तो छोटा सा दिल है, पूरी दुनिया घुसी चली आ रही है। इतने छोटे से दिल में पूरी दुनिया, पूरी कायनात कैसे घुसी चली आ रही है? अल्लाह अकबर, क्या है इस दिल में? तथा इसलिए आता है, बुजुर्गों ने फरमाया कि किताबों में ये बात मौजूद है कि जब आदम अलैहिस्सलाम को बनाया ना अल्लाह ताला ने खाका, तो शैतान चारों तरफ घूमा, उसने पूरे जिस्म, हाथ पांव दिमाग हर जगह घूमा। तो उसने कहा कि इस इंसान को जेर करना मेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं है, लेकिन एक डिबिया दिल, ये जो जिस्म दरमियान में एक डिबिया है, ये पता नहीं क्या चीज है, यहां उसकी रसाई ना हो सके। इस दिल पर उसकी रसाई ना हो सकी। उसने कहा ये डिबिया है, क्या होगी ये? यही वो खजाने की जगह है, यही है वो खजाने की जगह। इसलिए मेरे शेख रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, हदीस शरीफ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा अफ्तह अक्फाल कुलूबिना बिज़िक्रिका, कि अल्लाह हमारे दिले को, तालों को अपने जिक्र से खोल दीजिए। इस दिल में, इस कल्ब में ताले लगे हुए हैं। ताला कहां लगता है? जहां खजाना हो वहीं लगता है ना। जिस घर में कुछ ना हो वहां कोई ताला लगाएगा? बल्कि जितना खजाना कीमती होता है ताला उतना कीमती होता है। लिहाजा दिल में खजाना लगाना, दिल में ताला लगाना इस बात पर दलालत करता है कि अंदर कोई खजाना मौजूद है। और तजुर्बा यह है कि खजाना जितना कीमती होता है ताला उतना कीमती होता है, और ताला जितना कीमती होता है उसकी कुंजी, उसकी ताली उतनी कीमती होती है। लिहाजा खजाने की कुंजी की हिफाजत कैसी की जाती है? उसको ऐसे छोड़ देते? उस कुंजी की आम कुंजियों से ज्यादा हिफाजत की जाती है। तो जिस खजाने की कुंजी, जिस खजाने के ताले की कुंजी जिक्रुल्लाह हो, अल्लाह ताला का जिक्र हो, अल्लाह का नाम हो, कितना कीमती खजाना होगा वो। कि जिसकी कुंजी अल्लाह ताला ने अपनी याद बनाई हो, जिक्रुल्लाह बनाई हो, कितना कीमती खजाना होगा वो, कि जिसकी कुंजी इतनी कीमती है जिक्रुल्लाह, अल्लाह का नाम। जगह जगह फरमाया वज़कुरुल्लाह कसीरा, बल्कि फरमाया लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम फलाह पा जाओ। लोग कहते हैं ये खानकाओं में जिक्र क्यों बताया जाता है, तो खानका क्या है? तज़किये का मरकज। खानका क्या है? तज़किये का मरकज, और जिसका तज़किया होगा फलाह वही पाएगा। क्या फरमाया? कद अफलाहा मन तज़क्का, मुज़क्का यानी जिसका तज़किया हो जाए वही कामयाब होगा, वही फलाह पाएगा। और इस आयत में फरमाया वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ्लिहून, अल्लाह ताला को खूब याद करो ताकि तुम फलाह पा जाओ। तो पता ये चला कि ये तज़किये के लिए जिक्रुल्लाह जरूरी है, उसके बगैर कैसे फलाह होगी। इसलिए तो खानका में ये काम सिखाया जाता है कि जिक्रुल्लाह करो तुम फलाह पाओगे। क्या मतलब? वो जो फलाह का खजाना जो हमने तुम्हारे अंदर रखा है, कामयाबी का खजाना रखा है, जिसकी कुंजी जिक्रुल्लाह है, कितना कीमती खजाना होगा। अल्लाह हो, सोच सकते हैं? यही तो वो बात है कि जिनको वो खजाना जिनकी जानों को मिल गया, जिनकी जानों को अल्लाह ताला के कुर्ब का खजाना मिल गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिन गुलामों को अल्लाह ताला के कुर्ब का खजाना मिल गया, वो दिल का खजाना मिल गया, बादशाहों के तख्तो ताज उनकी निगाहों से गिर गए, सूरज और चांद की रोशनी उनको लोड शेडिंग मालूम होने लगी, हसीनों का हुस्न उनकी निगाहों से गिर गया, शामी कबाब की लज्जत उनको फीकी मालूम होने लगी, सारे गन्ने सारे आलम के गन्ने और मीठी चीज उनको फीकी लगने लगी। क्यों? उनको अल्लाह ताला खालिके लज्जाते दो जहां मिल गया, इसीलिए अब उनकी निगाहों में ये सब कुछ जचता नहीं है। ये है वो चीज, इसलिए दिल में बड़ा कीमती खजाना है और उसमें अल्लाह ताला ने ताला लगा के रखा हुआ है। और कायदा क्या होता है? कायदा होता है कि जिस मकान में ताला लगाओ ना, वो खुद ताला नहीं खोलता, बल्कि ताला दूसरे से खुलवाते हैं हमेशा, है ना? मकान खुद नहीं खोलता ही, तो हमारे दिल का ताला हम खुद नहीं खोलेंगे। हम जिक्रुल्लाह करेंगे, उससे कुंजी तैयार हो जाएगी। अब वो कुंजी कौन खोलेगा? शेख खोलेगा। इसलिए तो बुजुर्गों ने फरमाया अपनी मर्जी से जिक्र मत करो, बुजुर्गों से पूछ के करो, अपने शेख से पूछ पूछ के करो। और जो आदमी जिक्रुल्लाह नहीं करेगा वो तो कुर्ब के खजाने से महरूम रहेगा कि नहीं? दिल के खजाने से महरूम रहेगा वो। तो ईमान कलमा शरीफ पढ़ लिया, कलमा शरीफ पढ़ते ही उसके जो दिल में खजाना आया, ईमान का खजाना, कितनी अजीब बात है कि इसके घर में अंदर अपने खजाना मौजूद है और ये शख्स महरूम है। वहां रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते यही हाल है उस शख्स का। फरमाते कि ये वो शख्स है कि इसके सर पर रोटियों का टोकरा लदा हुआ है, इसके पांव घुटने तक पानी में डूबे हुए हैं और ये शख्स भूख और प्यास से मर रहा है। कितनी अजीब बात है कि मुसलमान जिसके दिल में ईमान का खजाना मौजूद है और ये मुसलमान दूसरों की चीजें देखकर मरूब हो रहा है, बादशाहों के बादशाह से मरूब हो रहा है, मालो दौलत वालों के मालो दौलत से मरूब हो रहा है, हसीनों के हुस्न से मरूब हो रहा है, यहां तक के काफिरों की जाहिरी नेमतों को देखकर मरूब और पागल हो रहा है। हालांकि अल्लाह ताला फरमा रहे कि यालमूना ज़ाहिरन मिनल हयाति दुनिया, वो तो दुनिया की सब जाहिरी चीजों को जानते हैं, वो तो इतना जानते हैं खाओ पियो, खाओ इंपोर्ट करो और पखाना निकाल दो एक्सपोर्ट करो, क्या जानते हैं वो? तो खुद अल्लाह ताला उनके इल्म को फरमा रहे हैं कि जिस इल्म का वो है वो उनका इल्म जाहिरी हयात का इल्म है। यालमूना ज़ाहिरन मिनल हयाति दुनिया, इस दुनिया की जो जिंदगी है सब उसका उनको इल्म है, क्या इंजीनियर, क्या डॉक्टर, क्या सियासत, क्या MBA, क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्या माला दौलत, क्या तिजारत और ट्रेडिंग, वो क्या है? या अलमून है वो, लेकिन किस चीज के या अलमून है? जाहिर या अलमून जाहिरम मिनल हयात दुनिया, इस दुनिया की हयात के सिर्फ जाहिर को जानते। वहुम अनिल आखिरती हुम गाफिलून। मेरे शेख फरमाते हैं कि देखो عربی قواعد کے اعتبار سے یہ کافی تھا, وہم عن الاخرتی غافلون, یہ کافی تھا, وہم عن الاخرتی غافلون یہ کافی تھا, بھائی مطلب کے اعتبار سے کافی ہو گیا نا کہ وہم وہ لوگ عن الاخرہ آخرت سے غافل ہیں, تو ہم غافلون کیوں فرمایا؟ کہ مستقل جملہ ہم غافلون یہ مستقل جملہ فرما دیا, اللہ اکبر, ان کی غفلت کو بتانا تھا. یہ جملہ اسمیہ, مستقل جملہ اسمیہ بتا کر بتا دیا کہ دیکھو ان کا حال یہ ہے کہ یہ جن کو تم اتنا سمجھتے ہو کہ یہ تو غفلتوں میں پڑے ہوئے ہیں, یہ ہم مسلمانوں کو سمجھایا کہ تم کن کے پیچھے بھاگ رہے ہو, خزانہ تمہارے پاس ہے, روٹیاں تمہارے سر پر لدی ہوئی ہیں, گھٹنوں تک پاؤں میں تم ڈوبے ہوئے ہو اور تم بھوک اور پیاس سے مر رہے ہو, تم اپنے کھانے میں سمجھتے ہو کہ کافروں کی وجہ سے ملے گا, حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ایمان والے کی وجہ سے کافر کو روٹی مل رہی ہے. بتاؤ جب اللہ اللہ کرنے والے نہ رہیں گے دنیا رہے گی؟ ختم ہو جائے گی نا, جب دنیا ختم ہو جائے گی رزق رہے گا؟ نہیں رہے گا نا, تو جب رزق کیوں؟ کیونکہ دنیا اللہ تعالی نے بنائی اپنے لوگ اپنوں کے لیے, جب اپنے نہ رہیں گے دنیا نہ رہے گی تو کافروں کو روٹی کس کی وجہ سے مل رہی ہے؟ یہ بوریا نشین, یہ اللہ اللہ کرنے والے کہ جن کو کہتے ہیں لو یہ صوفی, تو نے اللہ اللہ کر کے کیا کیا؟ اپنے مسلمان بھی بولتے ہیں صوفی تم اللہ اللہ کرتے تمہیں کیا ملا؟ کہا ہم اللہ اللہ کرتے تمہیں روٹی ملتی ہے. یہ ہے بات, ہمارے اللہ اللہ کرنے سے تمہیں روٹی ملتی ہے, تمہاری انجینئرنگ, تمہاری ڈاکٹری, تمہاری آرکیٹیکچری, یہ دنیا کے جتنے تماشے ہیں یہ ان اللہ اللہ کرنے والوں کی جیسے چل رہے ہیں, یہ جو تم بڑھیا چیزیں کھا رہے ہو سب یہ ان کی جیسے کھا رہے ہو, کیونکہ جب یہ نہ رہیں گے یہ کائنات بھی نہ رہے گی, قیامت تاری آ جائے گی, ہے کہ نہیں؟ حدیث شریف میں نا کہ لا تقم الساعة حتى يقال في الارض الله الله, یہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک زمین پر اللہ اللہ کہا جاتا رہے گا, اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی. اللہ اکبر, تو دل میں خزانہ ہے, اس لیے جو اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے ان کی صحبتوں میں رہتا ہے. تو دیکھو ایک اس میں رہنے والوں کی دو قسمیں, ایک تو وہ ہے کہ جو سب بیٹھتا ہے کہتا ہے بننا نہیں ایسا, محروم یہ بھی نہیں رہتا, محروم یہ بھی نہیں رہتا. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ لا ہم الجلسا لا یشقا جلیسہم, کہ ان کے پاس کا بیٹھنے والا بدبخت اور شقی نہیں ہوتا, اور جو ارادہ اصلاح سے بیٹھتا ہے اس کا تو حال ہی کچھ اور ہوتا ہے. پھر اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کے قرب کے خزانے کو ان کے اندر منتقل کر دیتے ہیں, سبحان اللہ, اب یہ خود اللہ والا بن جاتا ہے. اس لیے میرے پیارے دوستوں, رونا یہ بڑے کام کی چیز ہے. دیکھیے بچہ دنیا میں آتا ہے نا, اس کو بولنا نہیں آتا کہ مجھے پانی چاہیے, اس کو بولنا نہیں آتا مجھے کھانا چاہیے, اس کو سر میں درد ہو اس کو کچھ نہیں جان بتا سکتا میرے سر میں درد ہے, پیشاب آئے نہیں بتا سکتا, کوئی تکلیف ہو کچھ نہیں بتا سکتا, صرف ایک کام جانتا ہے بچہ, وہ کیا؟ رونا. اللہ تعالی نے اس بچے کو صرف ایک ادا سکھائی ہے, رونا. میرے شیخ فرماتے ہیں, ماں رومی نے فرمایا کہ بچہ روتا ہے, ماں شوہر کو کھانا دے رہی ہے, دوسرے بچوں کو کھانا دے رہی ہے, وہ شیر خار بچہ, دودھ پیتا بچہ سو رہا ہے, دوسروں بچوں کو کھانا چاہیے, وہ ماں کے پاس جاتے ہیں, ماں روٹی دے دو, اماں کھانا دے دو, سالن نکال دو, ماں بچوں کو شوہر کو روٹی تیار کر کے دے رہی. اتنے میں آواز آتی ہے بچے کے رونے کی, شوہر کہتا ہے ارے جلدی جاؤ بھوکا ہے اس کو دودھ پلاؤ. فرمایا کہ یہی حال ہے ان رونے والوں کا کہ دنیا کے دوسرے بچوں کو تو روٹی کے لیے جانا پڑتا ہے, اور جو رونے والا ہے ان کی روٹی اللہ وہیں بھیج دیتے. کیا عجیب بات نہیں ہے؟ لو جی تم کہتے ہو ملاؤں کو کمانے کے لیے جا رہے, بھائی ان کے رونے کی وجہ سے تو ان کو اللہ وہیں روٹی دے رہے, ان کو کمانے کے لیے مت بھیجو ورنہ تمہاری روٹی بند ہو جائے گی. ये ऐसे ही अच्छे हैं, ये ऐसे ही अच्छे हैं, इनको छेड़ो मत, ऐसे ही रहने दो, ये इसी तरह अच्छे हैं, ये इनकी जैसे तुम्हारे आयश है, ये जो जो आयश तुम कर रहे हो ना वो भी इन्हीं की वजह से। और इनके लिए अल्लाह ने इसलिए रखा, क्यों? क्योंकि इनको रोना आता है, ये रोते हैं बस। लगा जो बच्चा रोता है उसकी रोटी मां वहीं दे देती है, खुद जाती है दौड़ती सब काम छोड़ के और उसको उसके सर पर पहुंचकर वहां उसको रोटी देती है, उसको गिजा देती है, दूसरे बच्चों को रोटी लेने के लिए जाना पड़ता है। बस ये है रोने की बरकत, और यही रोना है जो सीखना पड़ता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला ये चीज हमें नसीब फरमाए और अल्लाह ताला अपने करम से हमारे ईमान को मुकम्मल फरमाए और हमारे जो कुर्ब के सूरज से जो धुंध के बादल छाए हुए, इसका इलाज यही कि रोना शुरू करें। और सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं, और आप ससम जो फरमा रहे हैं वो अल्लाह ताला ही तो फरमा रहे हैं, क्या? इबकू, रो, फैलम तबकू फतबा कऊ, न रोना है तो रोने वालों की शक्ल बना लो। फतबा कऊ, ये असल में फतबा कयू था, तबा कयू, या पर जम्मा सकील है इसलिए उसको साकित कर दिया। अब इज्तिमाए साकिनैन हो गई, दो साकिन जमा हो गए तो दोनों को जमा कर दिया तो क्या बना? फतबा कऊ, फतबा कू नहीं, मेरे शेख फरमाते थे तंबाकू बर वजन तंबाकू नहीं है ये, बल्कि फतबा कऊ, क्योंकि फतबा कयू था, तबा कयू था ना, तो काफ का जो है वो फता तो बाकी है, इसलिए फतबा कऊ, रो, नहीं रोना आता, रोने वालों की शक्ल बना लो। अल्लाह अकबर, तमाश बनाकर भेस फकीरों का गालिब, बनाकर भेस फकीरों का गालिब, तमाशाए अहले करम देखते हैं। दुनिया में भी कितने ऐसे फकीर हैं जो ड्रामे करते हैं, रोने की एक्टिंग बनाते हैं, लेकिन जिनके दिल नरम होते हैं वो बेचारों का उनके रोने पर रहम आता है, उनको भीख दे देते हैं। तो वो अल्लाह ताला तो खुद फरमा रहे हैं कि रो के दिखाओ, रोने वाली शक्ल बनाओ। रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे रोने नहीं रोने आता, रोने वालों की शक्ल बनाओ। एक साहब ने हकीम उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह को लिखा कि हजरत मुझे रोना नहीं आता, तो हकीम उम्मत ने जवाब दिया कि तो क्या आपको परेशानी है? कहा हजरत बस दिल कुड़ता है, दिल में तकलीफ होती है, दिल रोता है कि मुझे रोना नहीं आ रहा, दिल कुड़ता है। तो हकीम उम्मत ने फरमाया कि दिल में तड़प होना, दिल का कुड़ना, यह दिल के रोने पर दलालत करता है, और दिल का रोना आंख के रोने से अफजल है। अब हकीम उम्मत है ना, अल्लाह, बाज मरतबा आंखों से रोना नहीं आ रहा लेकिन दिल रो रहा है, और दिल रो रहा है कि हाय मुझे रोना नहीं आ रहा। अब एक बुजुर्ग शायर का मशेर मेरे शेर सुनाते थे कि हो गई है खुश्क, हो गई है खुश्क चश्मे तर, हो गई है खुश्क चश्मे तर, रोने से मगर हाय दिल अभी भरा नहीं। अब ये आंख तो खुश्क हो गई लेकिन दिल का रोना, दिल अभी भरा नहीं, इसका मतलब दिल अभी तक रो रहा है। यह है मेरी चीज, यह है वो चीज मेरे प्यारे दोस्तों जो अहलुल्लाह की सोहबतों से मिलती है, उनको की सोहबतों से दिल का रोना नसीब होता है, और ये दिल का रोना आंख के रोने से बेहतर है। वो आंख का रोना कि अभी रो के रोए, आंख से रोए, मस्जिद से बाहर निकले फिर बदनजरी शुरू कर दी, उससे आंख न रोए दिल रोए कि या अल्लाह मैं आपकी एक नाफरमानी करूं, और अगर कहीं निगाह किसी नामुनासिब जगह गलत जगह उठ गई बस उसके दिल ने रोना शुरू कर दिया कि हाय ये मैंने क्या किया, मैंने अपने मालिक को नाराज किया, ये क्या बेशर्मी बेहयाई का काम किया मैंने, अब आह निकल गई, या करीम मुआफ फरमा दीजिए, या रब्बी मुआफ फरमा दीजिए। आह, ये दिल का रोना आंख के रोने से बेहतर अफजल है। तो अगर कभी ऐसी मायूसी की कैफियत तारी हो जाए तो उसका इलाज क्या है? उसका इलाज है रोना। और देखकर मेरे अश्के नदामत, देखकर मेरे अश्के नदामत, अबरे रहमत की बारिश है जामे। देखकर मेरे अश्के नदामत, अबरे रहमत की बारिश है जामे। अल्लाह ताला अपने कर्म से हम सबको दिल का रोना नसीब फरमाए और हमारी मायूसियों को अल्लाह ताला उम्मीदों से बदल दे और अल्लाह ताला अपनी रास्ते में हमें तेज गाम बना दे। एक गाड़ी तेज गाम, तेज कदम, अल्लाह ताला अपने रास्ते में हमें तेज गाम बना दे और अल्लाह ताला अपने कुर्ब की मंजिल हमारे लिए आसान और इन अल्लाह वालों की सोबत, इनकी निगाहों से, इनकी सोबतों से अल्लाह ताला हमें अपनी मोहब्बत का और कुर्ब का, अखलाक का गल्ला नसीब फरमा दे। वाखिर दुआ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना या